परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मलिक कबीर देव कबीर परमेश्वर अपनी प्यारी आत्माओं को अपने सत लोक का ज्ञान देने के लिए स्वयं ही आते हैं। जिसमें वो परमात्मा आते हैं एक आम व्यक्ति जैसी भूमिका करते हैं, उसमें हम उस परमात्मा को पहचान नहीं पाते और ना पहचान कर उनके जाने के बाद हम उनका गुणगान करते हैं, उस परमात्मा की महिमा गाते रहते हैं। उनके रहते रहते हमने सावधान होना चाहिए, वो हमें क्या बताते हैं आकर के कि तुम काल के जाल में हो। ये जो साधनाएं आप कर रहे हो ये साधना आपकी शास्त्र अनुकूल ना होने से हानिकारक है, लाभ नहीं देती। आज सुबह के सत्संग में आपने सुना परमात्मा की भक्ति करने वाले करते साधना करते करते भी दुखी रहते हैं। जैसे आपने नल तथा नील की कथा सुनी, उन महापुरुषों के पास जिनके पास वो आत्म कल्याणार्थ और कष्ट निवारण के लिए जाते थे, उनसे उनको यही जवाब मिलता था, यही उत्तर मिलता था कि ये तुम्हारा प्रारब्ध का कष्ट है बेटा, ये तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। जबकि हमारे सदग्रंथ बताते हैं कि परमात्मा घोर पाप का भी विनाश कर देता है, पूर्ण ब्रह्म। वो पूर्ण ब्रह्म कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म कौन है? सर्वगतम ब्रह्म वो कौन है? उसके विषय में वेद ज्ञान देता दाता प्रभु भी कहता है कि मैं नहीं जानता उस परम पिता के विषय में। उसके विषय में कोई तत्वदर्शी संत आता है और वो तत्वदर्शी संत जो होता है जिसमें वो परमात्मा आता है वो अपनी महिमा बोल बोल कर सुनाता है, उसका भी प्रमाण दे रखा है कि वो कबीर वाणी के माध्यम से अपनी महिमा आप ही गाता है, जिस कारण से उसको कबीर कहने लग उसको कवि कहने लग जाते हैं, एक प्रसिद्ध कवि की उपाधि दे देते हैं, क्योंकि वो अपनी वाणी एक कविताओं के माध्यम से काव्यों के माध्यम से कविताओं के माध्यम से सुनाता है। उस तत्वदर्शी संत से ज्ञान प्राप्त करके फिर उनके द्वारा बताएगी हर मर्यादा का पालन करते हुए साधक अपना जीवन सफल कर सकता है, जन्म मरण से पूर्ण रूप से छुटकारा प्राप्त कर सकता है, पूर्ण मोक्ष प्राप्त करता है। वो परमात्मा पाप क्षमा कर देता है, पाप विनाश कर देता है, पापों के पाप विनाश कर देता है। वो परमात्मा अपनी महिमा आप ही साधारण भाषा में बोलता है, डब ही नाम हर दे धरो भयो पाप को नासे, जैसे चिंगी अग्नि की पड़े पुराने गाश। कि वो पूर्ण परमात्मा वास्तविक मंत्र देकर के ऐसे हमारे पाप कर्मों को फूंक देता है, विनाश कर देता है, जैसे बहुत बड़ा पुराना सूखा घास बहुत 1000 एकड़ में गपड़ा हो। और कहते हैं एक सीख की तिल्ली एक चिंगारी आग की और सबको फूंक कर भस्म कर देती है और फिर हवा उसको उड़ा करके बखेर देती है। कितना बड़ा कुबाड़ और उसका समाधान हो गया,
छोटी सी चिंगारी नहीं करती।
इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा अपने उस सच्चे मंत्र से, सतनाम से, सारनाम से सर्व पापों का विनाश करके अपनी प्यारी आत्मा को स्वच्छ करता है, अपने सीने से लगाने योग्य कर लेता है। जैसा कि आपने दिन में सत्संग सुना था कि जैसे माता उस छोटे से बालक को जो पालने में झूल रहा होता है, अनजानपने में वो उसके बस की बात नहीं होती, टट्टी और पेशाब में सारे कपड़े भी खराब कर लेता है, हाथ भी खराब कर लेता है, फिर रोने लगता है, माँ आती है, उसने वो बच्चे का गंध नहीं दिखता, उसने अपना लाल दिखाई देता, अपनी बेटी या बेटा दिखाई देता है, उसको नवाती है, कपड़े धोती है, फिर सीने से लगाती है, प्यार करती है, दूध पिलाती है। ऐसे वो परमपिता हमारे पापों को जो हमने अनजान पड़े हुए हैं, हम विवश हैं, जीव के बस का नहीं, पाप ना करें, क्योंकि हमें बांध ऐसा कसूती तरह दिया काल ने, हम विवश कर रखे। ये परमात्मा आता है, इसके बंधन से हमें छुटाता है, फिर वो उन अपने किए हुए हमारे पुराने पापों को साफ करके अपने सीने से लगाने योग्य करता है। तो वो परमात्मा हमें पार करता है, सतलोक ले जाता है। उस परमेश्वर को हम ना पहचान कर साधना गलत करते रहते हैं, और जब परमेश्वर आते हैं तब ये नकली संत वकील बन जाते हैं। उस परमात्मा की बात को नहीं मानते, ना सुनते, ना ही समाज को स्वीकार करने देते हैं। ये अभी तक यही कारण रहा कि ये तत्व ज्ञान और ये वास्तविक भक्ति हमारे से दूर रही। एक समय की बात है, परमात्मा जब आए हुए थे, अपने तत्व ज्ञान का डंडोरा पीटा करते थे, मुनादी करते थे, जगह जगह जाते थे और अपनी प्यारी आत्माओं को अपना भेद आप ही बताते थे। आप आरती, आप साजय, आप किंगर, आप बाजय, आप ताल झान झनकारा, आप नचे आप देखण हारा, आप भगवान बनया, आप भगवान, आप एक दास बना, जुलाहा रूप में आके 120 वर्ष तक यह भूमिका की और आप ही परम संत की भूमिका की। स्वयं ही मालिक ने एक परम संत की भूमिका की, तत्वदर्शी संत सतगुरु जगत गुरु की भूमिका भी की, और बनारस काशी की कुटिया में बैठकर पूरे ब्रह्मंडों का कंट्रोल भी किया उस मालिक ने अपने शक्ति के रिमोट से। जब वो परमात्मा वहां सत्संग किया करते थे, जो भी परमेश्वर के चरणों में आ जाता था वो स्वस्थ हो जाता था, क्योंकि प्रभु में ये प्रथम गुण है कि दुखी जीव को सुखी करता है, क्योंकि हम उसकी आत्मा है। और माता पिता पर अपना बेटा और बेटी दुखी नहीं देखी जा सकती, जितनी उसकी समर्थता होती है उतना अपना हर तन मन धन से उन बच्चों को राहत देने की चेष्टा करता है। और ये परमात्मा तो समर्थ है, इन परमात्मा कबीर साहब की शब्द कोश में, डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, असंभव शब्द नहीं है इस परमात्मा के शब्द कोश में, इसीलिए इसको समर्थ कहते हैं। इसलिए आदरणीय गरीबदास साहब जी कहते हैं, समर्थ का सरना गहो रंग होरी हो, भाई कबू न हो ए काज राम रंग होरी हो। फिर कहते हैं, वेदों में यही प्रमाण है, पवित्र वेदों में, पवित्र गीता जी में, पवित्र गीता जी का ज्ञान दाता प्रभु काल भगवान सदाशिव महाशिव कहता है कि अर्जुन, यदि तुझे परम शांति चाहिए और पूर्ण मोक्ष चाहिए तो उस परम पिता की शरण में जा। गीता जी अध्याय नंबर 18 का मंत्र नंबर 62 में बोला है, उसकी कृपा से ही तो परम शांति और शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। हर सदग्रंथ, प्रत्येक सदग्रंथ, प्रत्येक महापुरुष उसी परमात्मा की तरफ संकेत करते हैं और वो परमात्मा स्वयं आते हैं। उस समय हम बालक होते हैं, पहचान नहीं पाते हैं। वो आवाज लगाते फिरते हैं, मैं भगवान हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, पर हम नहीं सुनते क्योंकि हमारी बुद्धि काल के दूतों ने, काल के ब्रह्म के संदेश वाहकों ने परिभाषा भगवान की उल्टी पढ़ा रखी है। परमात्मा निराकार है, परमात्मा तो किसी को दिखाई नहीं देता, वो तो बस कुछ देखने की चीज न्यारी है। और वेद सदग्रंथ बताते हैं वो साकार है, मनुष्य सदृश्य है, हमरे ही उनिहार है, हमारा सृजनहार, हमारे जैसा है हमारा भगवान, अपने जैसी सकल उसकी। लेकिन उनकी शक्ति में और हमारी शक्ति में बहुत अंतर है। राजा भी मनुष्य जैसा ही होता है, लेकिन राजा की शक्ति में और मनुष्य की शक्ति में दिन रात का अंतर होता है। ऐसे अंतर है परमेश्वर में। परमेश्वर कबीर साहब की शरण में जो भी आते थे उनको तुरंत संकट निवारण हो जाता था। परमात्मा उस समय आए थे अपना ज्ञान देने के लिए और साथ में अपने गवाह तैयार करने के लिए और अपनी समर्थता का प्रतीक अपनी लीला करके दिखाने आए थे कि इस समय जब ये शिक्षित, ये शिक्षा का समय आएगा, उस समय सब वेद और सदग्रंथ का इतिहास सामने लाया जाएगा और फिर वो पहले की हुई लीलाओं को वो वेद शास्त्र हमारे प्रमाण करेंगे। परमात्मा ये काम करता है, परमात्मा ऐसा होता है, प्रभु ऐसा होता है, वो ऐसे आता है। जैसे आपने कल के समाचार पत्र में पढ़ा था कि वो परमात्मा सहसरीर आए थे, आज के समाचार पत्र में आपने पंजाब केसरी में पढ़ा कि वो परमात्मा सहसरीर गए थे। प्रत्यक्ष प्रमाण है, आज भी वो पवित्र यादगार गवाही हैं, साक्षी हैं कि सचमुच ये घटना यहां घटी थी। और वहां परंपरागत एक महंत परंपरा होती है, महंत परंपरा होती है इन यादगारों के रखवाले, उनका इतना ही काम होता है बस। अब ये अनजान पड़े अपना कर्म बिगाड़ने लगे, ज्ञान उनको होता नहीं, नाम भी देने लगे, जीव को गुमराह कर रहे हैं। बाकी उनका काम इतना ही होता है कि उन यादगारों की रुखाड़ रखें, इनमें कोई ढा ना दे, खत्म ना कर दे, ये निशान मिट ना जावे, इतना सा काम है। तो उस परंपरागत ही वहां पर आज गवाह बैठे हैं कि सचमुच ये घटना यहां घटी है। पूरा गांव गवाह है वहां पर, नगर एक मगर एक छोटा सा नगर है और वो पूरा गांव वो नगर गवाह है इस बात का कि सचमुच ये घटना यहां घटी थी, ऐसे ही हुआ था। 600 साल कोई ज्यादा नहीं होते, 600 ही नहीं बल्कि सन 1518 में 500 वर्ष हुए हैं, ज्यादा से 500 परमात्मा जब यहां से गए, सन 1518 में परमात्मा सहसरीर गए थे। ऐसे जब वो परमात्मा वहां लीला किया करते थे, काशी में सत्संग करते थे, बहुत ही जीवों को सुख हुआ। जिनको परमात्मा की शरण प्राप्त हो जाती थी वो तो गुणगान करता करता थकता नहीं था, जो भी मिल जाता था उसी के सामने गुणगान करता था, भगवान आए हैं, आ जाओ सत्संग सुन लो, शरण ले लो, उपदेश ले लो, बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन उन भ्रमित किए हुए लोगों, उन गुरुओं के द्वारा वो नहीं मानते थे। अपने गुरुजियों से जाकर पूछा करते थे, गुरुजी ऐसे सुना है कि कबीर नाम का भगवान आए हैं, वो पूर्ण परमात्मा है, सबके दुख दूर करते हैं। वो गुरु लोग कहते थे वो अशिक्षित है, वो क्या जाने वेद शास्त्रों के बारे में, उसको अक्षर का ज्ञान नहीं है, हम सारे सदग्रंथों का हमने अध्ययन किया है, ऐसा कोई नहीं लिखा, वो झूठ बोलता है। ऐसे यह बात बिगड़ी रही और फिर भी परमात्मा के उस समय परमात्मा की शरण में 64 लाख शिष्य आए थे, 64 लाख शिष्य हो गए थे भगवान के, जबकि पूरे हिंदुस्तान की आबादी जिसमें अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, इराक, جو سارے ترکی پرکی سارے اسی میں تھے. جب زیادہ سے زیادہ 4 کروڑ سے زیادہ جن سنکھیا رہی تھی اور اس سمے 64 لاکھ سے سو جانا ایک معمولی سے وکتی کے لیول کی بات نہیں. یہ بھگوان تھے. 81 میں جلحا بن کر رہنے والے وکتی کے 64 لاکھ سے سو جاویں کوئی چھوٹی بات نہیں تھی. لیکن ان ٹھیکے داروں نے, یہ نکلی گروہوں نے اس پر پرم پتا کی مہیما کتی مٹی میں ملا رکھی تھی. لال کو ریتے میں دبا رکھا تھا گہرے کھڈا کھود کے. اب اس مٹی کو نکالنے میں بہت پریشرم کرنا پڑ رہا دراس نے. اب تو بچے بہت سے ہوگی ہوگے میرے اس مالک کے مارک کو سمجھانے کے لیے, بہن بیٹی بھائی بچے بزرگ نوجوان بچے بھی جا جا کر ہر ایک کو سمجھاتے ہیں. پرمان ہمارے پاس ہے, سب کے منہ بند ہوتے جا رہے ہیں. ایک بار ٹاٹا کرتے ہیں پرتیکس پرمان دیکھ کر, پھر ان کی نانی سی مر جاتی ہے. مانو ویسک مت پر یہ پتا لگ جاتا ہم جھوٹے ہیں وہ ستیہ ہیں. اور ایک دن ایسی سماج ایک دن ایسی انگڑائی لے گا دیکھ لینا, نو ٹوڑ کے ٹوڑ اٹھکاؤں گے. پہچانیں گے اپنے بھگوان کو اور پشچاتاپ کریں گے اس گئے ہوئے سمے کا. رویا کریں گے بیٹھ کے, اے بھگوان یا کی بنی, اتنے انجان آدمی ایسا دھوکھا کیا کرتے منس کے ساتھ, جیووں کے ساتھ ایسا ظلم کر رکھے ہیں لوگوں نے. گاؤں گاؤں میں بیٹھے ٹھگیے ڈیرے بنائے, ظلم کر دیا انہوں نے. کہہ کہہ کر گیان نہیں دنیا کو گمراہ کر دیا. اب مٹی نکالنے والا داس ایک اور الٹی مٹی ڈالنے والے 1000. اب پرماتما کی دیا ہوگی کہ پرماتما کے بچے بہت ہو گئے, 4 لاکھ کے قریب ہو گئے. اور یہ 4 لاکھ وہ ویکتی ہیں, وہ بہن بھائی بزرگ ہیں کہ کسی کی نہیں مانے آخیا دیکھ رکھا ہے. سارا کھیل بھگوان کی مہیما دیکھ رکھی ہے, سد گرنتھوں کے پرمان ان کے پاس ہے. تو یہ ایک ایک نسم جاؤں گے تو بھی دو سال میں 4 نہیں تو 6 لاکھ 2 لاکھ تو ضرور اور بڑھیں گے ایک سال میں. ایک ایک ویکتی کو تو ضرور سمجھاتے ہیں, ایک دو تو مان ہی جاتا ہے. اور اب یہ سد گرنتھوں کا رہسیہ سماچار پتروں میں اور ٹی ویوں پر بھی چل رہا ہے. اب جو بھی ہمارے پاس روزانہ یہ پیپر میں جب ایڈ آ رہی ہے, روزانہ سینکڑوں فون آ رہے ہیں پستک منگوا رہے ہیں اور پرشنسا کر رہے ہیں, ابھی کمال کر دیا, یہ کہاں چھپا تھا یہ گیان. ہوئے ہوئے اب کیا شبد نہیں ہمارے پاس, کیسے کیا گنگان کرے ایسے نرمل گیان کو, کیسے سمپل ڈھنگ سے ایک سادھارن ڈھنگ سے سمجھایا گیا ہے. گیان تو سادھارن ہی ہے, اس نے ہندی میں بول کر سمجھا لیتے, انگریزی میں بول کر بتا دیتے, سنسکرت میں گٹ مٹ کر لے. بات تو وہی بتانی ہے کہ بھی بھگوان بجے بنا بات بڑے کو نہیں, پورن پرماتما ایک ہی ہے. وہ کون ہے, وہ کیسا ہے, اس کو پایا کیسے جاتا ہے, وہ کے سکھ دیتا ہے, یہ 4 بات. یہ 3 لوگوں نے الٹا گیان گڑ کے یہ سارا کام اڑ جا دیا. 9 من سوت اڑ جا رکھا تھا, 9 من سوت اڑ جا رکھا تھا. پہلے سوت تھوڑا سا بھی اڑ جاتا وہ لینے کے دینے پڑ جاتے تھے, اس الجھانے والے کو مشکل ماں جایا کرتی. اور یہ 9 من سوت اڑ جا کے گر رکھا تھا, اس گیان کو ایسا الٹ پلٹ کر دیا تھا. اب پرماتما کی میر ہوئی ہے, یہ دھیرے دھیرے سارا سلجھن لگ رہا ہے اور بالکل اس کے ایسا بڑھیا بنڈل بنا دیں گے کتی اڑ جائے کوئی نہ کدے بھی. اتنا سوچ اور نرمل گیان کر دیا جائے گا پرمیشور کی رضا سے. ایسے پستک بن رہی ہیں کہ صدا کے لیے جب تک بھکتی رہے گی سنسار میں, اب یہ گیان نہیں رلے گا, یہ گیان نہیں ختم ہوگا. ہاں جب ختم ہوگا اس میں بھکتی ہی سماپت ہو جائے گی, پھر کوئی بھکتی کرنے اب پرتھوی پر انسان نہیں رہے گا. اب جنہوں نے بھکتی چاہیے وہ انسان پیچھے نہیں رہے گا, کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں لگیا تھا پرماتما ہے کون, نرنے ہی نہیں ہو پا رہا تھا, اب نرنے ہو چکا ہے. ایک سمے پرماتما ستسنگ کیا کرتے تھے, وہاں ایک سروانند نام کا ایک بہت بڑا وکھیات ایک ودوان کہلاتا تھا, سنسکرت کا گیاتا, ویدوں کا گیاتا,
और गीता जी का मर्म ज्ञाता रूप में प्रसिद्ध था। सर्वानंद जी ने अपने समय के सभी विद्वानों को शास्त्रार्थ करके पराजित कर दिया था। ऋषि सर्वानंद जी ने सभी सदग्रंथों का अध्ययन जैसे उसकी बुद्धि ने काम किया वो घोट रखा था, और साथ में एक बैल के ऊपर पूरे चारों वेद, 18 पुराण, 11 उपनिषद, महाभारत, गीता जी, सुधा सागर सबको एक बैल के ऊपर एक बोरे में डाल के, जैसे गधों पर बोरा डाला करे ऐसे बैल के ऊपर डाल के और साथ लिए फिरता था। उसके अध्याय श्लोक नंबर सारे कंठस्थ याद कर रखे थे और उस समय के सभी विद्वानों को पराजित कर दिया उसने। सर्वानंद जी की माता जी श्रीमती शारदा एक बहुत अच्छी आत्मा थी, ब्राह्मण कुल में जन्म था। उनको एक बहुत भयंकर बीमारी थी, सारे शरीर में एक बहुत ही बेचैनी सी रहती थी, भुगत रही थी। बहुत से ऋषियों, महर्षियों, संतों, पामिष्टों के पास जन्मपत्री बनाने वालों से भी सारा कुछ उन्हें दिखा कर लिया था, अपने बेटे से भी सारे जंतर मंतर करवा लिए थे। सभी ने ये कहा था कि माताजी आपके प्रारब्ध का कष्ट है, ये आपको भोगना ही पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं है। उदाहरण देते थे जैसे भगवान श्री राम ने बाली को मारा था, उसका भी बदला देना पड़ा, भगवान ने भी अपना दंड भोगना पड़ा, ये कर्म का दंड तो माता भोगना ही पड़ेगा। सभी ये कह करके और अपनी वाणी को विराम दे देते थे। अब शारदा ने भी ये सोच लिया था कि देखो भी 10 वर्ष का जीवन है या 5 वर्ष शेष है, ये ऐसे भोगना ही पड़ेगा। परमात्मा अपने बच्चों को काल के जाल से निकालने के ना जाने क्या क्या तरीके अपनाते हैं। शारदा जी की एक सहेली परमेश्वर कबीर साहब की शिष्या हो गई और उस बहन को बहुत कष्ट था और साथ में घर में नुकसान भी बहुत था, कर्जा भी बहुत हो गया था, बच्चे भी बीमार रहते थे, स्वयं भी तकलीफ में रहती थी। उस बहन ने परमेश्वर का उपदेश लिया, उपदेश लेते ही वह स्वस्थ होगी, घर में भी हर चीज की बरकत शुरू होगी, गदगद होगी, जहां जावे उसी के सामने कबीर परमात्मा की महिमा गाने लगी। वो सहेली एक दिन शारदा के पास, भक्तमती शारदा जी के पास पहुंच गई, कुशल मंगल पूछा। कुशल मंगल पूछने के बाद के समय शारदा ने कहा, बहन के कुशल बताऊं और के अकुशल बताऊं, मेरा तो जीवन व्यर्थ हो गया, बहुत परेशान रहती हूं, बहुत दुखी हूं, मेरे जैसा दुखी आज संसार में प्राणी नहीं है जिसका शरीर ही ठीक नहीं है। उस बहन ने कहा कि बहन मैं आपसे एक अर्ज करती हूं, आप हमारे गुरुदेव से उपदेश ले लो, दीक्षा ले लो, आपका ये रोग नहीं रहेगा अगर सच्चे दिल से तू मालिक को चाहेगी तो, बजेगी जैसे उनके नियम रहेगी तो आप बीमार नहीं रहोगी, आपका कष्ट दूर हो जाएगा। शारदा जी ने कहा कि मैंने कोई संत नहीं छोड़ा, कोई ऋषि नहीं छोड़ा, कोई वैद्य नहीं छोड़ा, सब जगह इलाज करवा चुकी हूं, बहन मेरा कष्ट निवारण नहीं हो सकता। उस बहन ने जो परमात्मा से उपदेश प्राप्त कर रखा था वो कहने लगी, मेरी बात मान ले, मैं सही कहती हूँ, मेरी स्थिति भी यही थी, मैंने भी सब जगह जंतर मंतर करवा लिए थे, ना तो घर में बरकत हुई थी और न ही मेरे शरीर में मेरे बच्चे ठीक रहे थे। फिर शारदा ने सोचा हो सकता है कोई ऐसा महापुरुष हो कहीं। शारदा जी ने कहा कि फिर कौन है वो महापुरुष, कहाँ रहते हैं? कि अपने नगर में काशी बनारस में ही रहते हैं। क्या नाम है आपके पिता, आपके गुरुदेव का? शारदा जी ने पूछा। उस बहन ने बताया कि वो कबीर परमेश्वर आए हैं। कबीर परमेश्वर कौन? कबीर कहाँ रहते हैं? कि उस ऐसे ऐसे जुलाहों की कॉलोनी में वो कबीर परमात्मा है, तो आशारद कहने लगी, कौन वो नीरू का पुत्र क्या, वो जो ऐसे मिला था तालाब में पड़ा पाया था। अब वो बहन कहने लगी कि बहन ये तो बाद में बताऊंगी मैं, जब तू नाम ले लेगी ना फिर बताऊंगी, फिर पूछूंगी तेरे ते वो कौन कित पड़ा पाया था, क्या चीज है, वो जुलाहा है या भगवान है, पर मेरी अर्ज है आप एक नाम ले लो, तो बस इतना ही कहूंगी मैं। न्यो बोली है तेरी अक्ल मारी गई क्या, तेरा दिमाग कौन से तो कहां घूम रहा है, मैं ब्राह्मण, हम ब्राह्मण वो एक नीच जाति का जुलाहा है, पागल कहीं की हमने, मैं ना दू उसका नाम कद देवी, और मेरे तक कहना भी नहीं आगे आज के बाद, मरण लाग रही बुढ़िया भुगतन लग रही, और वो जाति की मरोड़ी न्यो की न्यो है तेरा गजे भैया। काल ने हमारा ऐसे फुद्दू खेच रखा है, ऐसे मूर्ख बना रखा है हमारे को, आज मान लीजिए हम ब्राह्मण है, कल जन्म हो जा किसी मुसलमान के घर पे या दूसरी जाति में भी तो हो सकते हैं, तो ये हमारे को ज्ञान किसी ने दिया नहीं, इस तरह कोई समझा नहीं पाया था कि हम ये बीच की दीवार ना बनाते, पर ये ढह जाएगी धीरे धीरे, खत्म हो जाएगी, ज्ञान होता जाएगा आप पे खत्म हो जाएगी। तो बहन उठकर चली गई कि इसकी शारदा की दबदी कति उल्टी हो रही है, परमात्मा अपने बच्चे ने छोड़ा को ना, किसी प्रकार भी उसने कोई भी कारण क्यों ना बनाना पड़े, अपनी आत्मा को चरणों में लेकर ही मान्या करता है। कुछ दिनों के बाद एक और बहन जो परमात्मा की उपदेशी थी, कबीर साहब का उपदेश ले रखा था, उसका भी जाना हो गया, कुशल मंगल पूछा तो उस बहन ने कहा कि शारदा तेरा तो आधा शरीर भी नहीं रहा, क्या हो गया आपको। शारदा ने कहा बहन के बताऊं, मरिया जाता ना जिया जाता, उंगलियां पर दिन गिणू कद मरूं, भुगत रही हूं अपने किए कर्म ने। उस बहन ने कहा कि ये कर्म के दंड से दुख होता है और परमात्मा कर्म के दंड को समाप्त कर देता है, आप हमारे पूज्य गुरुदेव से उपदेश ले लो। शारदा मां भी बहुत दुखी थी, मुझे भी किता धरती पर ठिकाना नहीं दिखा था, मृत्यु के अतिरिक्त मैंने कुछ नहीं सोच रखा था, ऐसी स्थिति थी मेरी कि मैं आत्महत्या कर लेती बच्चा ने भी साथ लेकर। और जिस दिन से भगवान के चरणों में आई हूँ कबीर पर, उस मेरे भगवान गुरुदेव के चरणों में आई हूँ, उस दिन से बहन मुझे पूरे परिवार ने नई जिंदगी मिल गई, आप मेरी बात मान लो, हमारे गुरुदेव से उपदेश ले लो। आंखों में आंसू भर के वो बहन कह रही है, उसकी दृष्टि उसकी दुख के दुख को देखकर, शारदा के दुख को देखकर कह रही है। शारदा कुछ नरम हुई, उसने सोचा जब ऐसा कह रही है कोई संत होगा, हो सकता है ना जाने, ये तो आत्मा को आभास है कि है कोई शक्ति ऐसी जो दुख भी दूर करती है, हमारे नहीं हो रहे हैं तो वो दूसरी बात है। तो उसने पूछा कौन है फिर वैसे, वो कौन है वो ऐसे महापुरुष, मुझे बता दो मैं चलूंगी। उस बहन ने कहा कि वो कबीर परमेश्वर। अब शारदा को पता था, ज्यादा डिस्कस नहीं की, कहने लगी बहन वो धानक क्या, वो जुलाहा नीरू वाला पुत्र। अब वो बहन उसके मुंह की तरफ देख रही है, पता था कि यही बोल लगी है। तब उस बहन ने परमात्मा की शिष्या ने कहा कि शारदा आज हम ब्राह्मण हैं, मैं भी तो ब्राह्मण थी, आज हम ब्राह्मण हैं, कल हम और आज मुझे क्या मिल रहा था, क्या ब्रह्म माटी मेरी हो रही थी, और कल न कहीं और भी तो जन्म हो सकता है, भगवान आए हैं हमने भगवान चाहिए, पहचान ले उस मालिक को। शारदा बोली बहन मेरे आगे से जिक्र मत करना, क्या बात कर रही हो, हम ब्राह्मण और वो एक छोटी जाति धानक जुलाहा, के कहेगा जमाना मेरे तो दुनिया के थूकेगी हमने, मैं नहीं लूंगी नाम नो। वह बहन उठ कर आगे देख विनाश काले भी प्रतापुधि नहीं मान रही है, देख कितनी अच्छी थी, मेरी हर बात को माना करती थी, आज स्टेनलेस स्टील होगी मरोड़ी खाली, ढंग से बात भी नहीं कर रही है, देख कितने माड़े बाग इसके। वह भी उठ कर आगे, अब परमात्मा नहीं छोड़ता, वो नहीं छोड़ेगा अपनी प्यारी आत्मा, काल वैसे कितनी मीठी गोली दे रख, एक समय आएगा ये सब समझ जाएंगे। परमा क्या रिश्तेदार ब्राह्मण था शारदा जी का, वो उसका वहां जाना हो गया, दो तीन वर्ष के बाद गया। और शारदा उससे बहुत प्रीति थी कि वो बहुत दुखी था, उसके परिवार में बहुत हानि होती थी, बालक भी बीमार थे, पत्नी तो मृत्यु के निकट थी उसकी, और ये भी पता था कि अब उसको बहुत सुख हो गया है, पैसे भी उसके पास हैं, गुजारा ठीक हो रहा है, इस बात का भी उसको संदेशा था। वो ही पहुंच गया वहां पर और कुशल मंगल पूछा, शारदा ने अपना दुख बताया तो उनके रिलेटिव ने कहा, शारदा आपने मेरा जीवन देखा, क्या हाथी, मुझे रिश्तेदार देखकर भी प्रसन्न नहीं थे, इतना टोटा था, इतना दारिद्र था मैं, और आज मैं बहुत सुखी हो गया, मेरे बच्चे भी सुखी हैं, मेरी पत्नी भी स्वस्थ होगी, और मैंने ऐसा सोच लिया था एक बार तो कि इस जीवन से अच्छा तो मृत्यु ही मिल जाए तो ही अच्छा है। आप हमारे गुरुदेव से उपदेश ले लो। अब शारदा ने सोचा ये ब्राह्मण है और इसने तो कोई खास ही कोई ब्राह्मण से ही नाम दे रखा होगा, उससे पूछा कि आप ठीक है, मैं आपको खूब जानती हूँ, आपकी स्थिति से भी परिचित हूँ, मुझे सब संदेशे मिलते रहते थे कि आज आपकी बहुत मौज हो रही है, कौन है आपके गुरुदेव? उस रिश्तेदार ने कहा कि वो कबीर परमात्मा, कबीर देव, कबीर भगवान, उनको संत कहूं या राम कहूं, शारदा के कौन से शब्द से उस परमात्मा की महिमा गाऊं। अब शारदा कहती है कि तू ब्राह्मण हो कह, तेरी अक्कल भी क्यों मारी गई, तू भी वहां कहां फंस गया जाके, तने शर्म नहीं आई, क्या समाज तुझे कह रहा होगा, मुझे नहीं पता था तो इतना गिर गया कि एक दानक से का शिष्य हो गया, हम तो जगत के गुरु हैं, ब्राह्मण है। वो भक्त बोला, शारदा ये बनावटी बातें ठीक नहीं तेरी, मेरी वो सती थी तुझे याद है कि मैं रिश्तेदार के जाता था, रिश्तेदार के माथे पर तीन तोड़ी गिर जाती थी, वो सोचता था कि आ गया 10 रुपए मांगने आया होगा, और मैं भी जान जाता था कि इसका चेहरा बदल गया मेरे दर्शन होते ही। शारदा, इस समाज ने, इस ब्राह्मण जाति और कुल के लोगों ने मुझे क्या दिया था, 10 रुपए कोई देता था उसका ब्याज लेता था, और आज मेरे पास मेरे बच्चे स्वस्थ, मेरी पत्नी की जीवन प्राप्त हो गया, मैं भी बहुत परेशान रहता था, मानसिक टेंशन मुझे रहती थी इस कर्जे के कारण, और कोई भी 2 पैसे देने को तैयार नहीं था, और आज मेरे पास सब कर्जा उतर कर 10 रुपए मेरे पास है, जहां भी जाता हूं सबसे पहले मुझे सीने से लगाते हैं और फिर ये पूछते हैं जल्दी आना, गणित दिन मत लगाना, आज ये कृपा मेरे परम पिता परमेश्वर कबीर देव की है, और आपकी इच्छा नाम लो या मत लो पर पछतावेगी इन दिनों को, न्यू कहकर उठ कर आ गया। इन तीन चोटों से शारदा कति टूट गई कि अभी एक कहे, 2 कहे और 3 कहे, और ऐसे दुखी इसको तो मैं खूब जानती हूं कितना कष्ट था इस प्राणी के ऊपर, और आज ये व्यक्ति ये बात कह रहा है तो बहुत सोचने पर विवश होगी, सारी रात नींद नहीं आई इसने कि ऐसी परम शक्ति आई है, और जाऊं तो ये दुनिया क्या कहेगी, ये तो चलो एक छोटा मोटा ब्राह्मण है, मेरा तो बेटा वेल नोन है सारे इस क्षेत्र में, क्यों जाऊं, हे भगवान कैसे जाऊं उसकी शरण में, ऐसे सोच रही है। फिर अपने मन में आप ही विचार कर लेती है कि यहां कहीं आसपास कोई सत्संग होगा, उस सत्संग में मैं जाऊंगी और घूंघट करके जाऊंगी, कोई पहचान ना रहे हो मैं ब्राह्मणी हूं अंधेरे से मैं, और मेरे सिर पे हाथ रखने जब मैं स्वस्थ होगी तो नाम ले लूंगी, चरणों में गिर जाऊंगी वहीं पर, और मुझे राहत नहीं मिली तो तो उठ कर आ जाऊंगी, किसी ने बेराना पाटेगा, किसी को पता नहीं लगेगा कि मैं वहां गई थी, ऐसा सोच के और इंतजार करने लगी कि आसपास कहीं सत्संग हो। ऐसे दयालु भगवान, ऐसे ये परमात्मा सारी इच्छा पूर्ण करने वाले अपने बच्चों की, उन्हीं के आसपास एक सत्संग कर दिया किसी गरीब के घर पे। शारदा को पता लग गया बहन को कि भगवान कबीर साहब का सत्संग यही पड़ोस में हो रहा है, तो उसने सोची आज जरूर जाऊंगी। परमात्मा सामने आसन पर बैठे थे, एक घी की जोत जला रखी थी जो दीपक का काम भी कर रही थी, हवन का काम भी कर रही थी। अब सभी श्रोतागण आ रहे थे, परमात्मा के सामने दंडवत प्रणाम कर रहे थे, चरणों में शीश रख रहे थे, आशीर्वाद परमात्मा दे रहे थे, अपना अपना स्थान बहन भाई ग्रहण कर रहे थे। अब शारदा भी अपने मुंह पर घूंघट करके और करे थे ऐसे ही करके जाकर चरणों में सिर रखा, सिर पे हाथ रखा भगवान ने और कहा सर्वानंद की मां आज धानक के पास कैसे आएगी तेरा समाज के एक भगत ने। जब ये अंतर्यामी परमात्मा ने उसको पहचाना और साथ में सिर पे हाथ रखते ही वह स्वस्थ हो गई, चरणों में गिर गई बुढ़िया और बहुत रोई, ने बोली भगवान कहां छुपे थे आप, ये परमात्मा मेरे जैसा दुखी पृथ्वी और प्राणी नहीं था मालिक, अंतिम सांस गिनो थी, फिर तो बुढ़िया ने खोल दिया घूंघट भी समझ स्पष्ट खड़ी होगी सब बहन भाइयों के सामने और सबको कहने लगी बहन भाइयों मैं सर्वानंद की मां हूं और मैं बहुत दुखी थी, मेरे ऊपर इतना कहर था कष्ट था, सब जंतर मंत्र करा लिए थे, सब ऋषियों के पास जा चुकी थी, आज परमात्मा के सिर पाथ रखते मैं स्वस्थ हो गई हूँ, हे भगवान क्षमा कर दो मालिक मैंने बहुत बुरी बली कही आपके विषय। परमात्मा ने कहा कोई बात ना बेटी, आप नहीं बोल रहे थे, ये काल ने मेरे ही बच्चे मेरे दुश्मन बना रखे, इनको या गुटी प्यार रखी है माया की, इसने नशा करा दिया या भांग प्यार रखी है सबको बेटा, और मुझे पहचान नहीं रहे, ये पहचानने नहीं देता, इतना चालबाज आदमी है ये निरंजन ज्योत निरंजन। कबीर ये माया अटपटी सब घट आने अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुए भांग पड़ी, कुए में भांगे रखी है, एक व्यक्ति को समझाने के लिए इतना प्रयत्न करना पड़ता है, नए सिरे तो मानना पड़ता उस प्यारी आत्मा को, इतना उसके अंदर मैल ठोक दिया काल ने उल्टा ज्ञान पड़ा पड़ा के, कि तो मजहब नारे बना के, कि तो जाति नारी बना के एक दूसरे के दुश्मन बना दिए, आपस में हमें पीस रखा है, पति पत्नी की लड़ाई रख रोज कहन कहन के बात पे, बहन भाई का झगड़ा, भाई भाई का झगड़ा, मजहबों के लठम लट्ठा, ये मच्छर बना दिए बता मच्छरा बिना के आंट लाग रही थी, ये मच्छर काटो इन्हें रात न पढ़न दे ना दिन में पढ़न दे, इतने परेशान है भगवान। फिर सत्संग सुना, परमात्मा ने पूरी सृष्टि रचना जचा कर सुनाई, शारदा की कति सारे पर्दे खुल गए, उपदेश ले लिया, सब कति स्वस्थ होगी और हरेक ब्राह्मण के पास जावर समझावर नाम ले लो, बल्कि उस शारदा को धिक्कारन लग गए, इतने शर्म नहीं आई, तू क्यों बेशर्म होगी, एक धानक से नाम ले लिया, क्या क्या कहेगी दुनिया, तेरा बेटा तो इतना बोलबाला हो रहा है, उसका दुनिया पूज रही है, उस जैसा विद्वान ब्राह्मण नहीं है, और क्या कहेगी दुनिया उसको, तेरी माँ एक जुलाहे का नाम ले लिया। शारदा बोली के बताऊं, ये शराब मैंने पी रखी थी जो तू बोली बोल रही हो, ये तो वही जाए शराब यू नशा उतरेगा ना कि तो उतरे को नहीं, एंटीबायोटिक इस नशे ने तारण की, उस परमात्मा के पास दवाई है और पृथ्वी पर है ही नहीं। अब उसकी मां ने सर्वानंद की मां ने शारदा ने सोचा और तो देखी जाए को मानने चाहे मत मानो, मेरा बेटा तो काल तो छूट जाए, किसी प्रकार मेरा बेटा ही मान जावे, वो कई बार चर्चा करती थी देख बेटा मैं स्वस्थ होगी, कैसे हुई मां सर्वानंद पूछा करता था, भाई भगवान आए हुए है कबीर साहब और मैंने उससे नाम लिया बेटा, मेरे सिर पर हाथ रखा था, मैं ऐसे अपने मन में एक संकल्प करके गई थी कि मुझे सिर पे हाथ रखते ही राहत मिलगी, मैं स्वस्थ होगी तो नाम लेकर आऊंगी भाई, मैं पक्का दृढ़ निश्चय करके आ गई थी। और बेटा मेरे सिर पे हाथ रखते मैं कति स्वस्थ होगी, देह मेरी क्या हालत थी। और मैं तो भाई नाम ले आई गुरुदेव के। और सर्वानंद बोला, माँ जब आप स्वस्थ होगी, सचमुच आप तो बहुत बुरा हाल था, मैं भी रोया करता अपनी माँ की हालत देख करके, कोई बसा नहीं रही थी मेरी, मुझे बहुत खुशी हुई मेरी माँ स्वस्थ होगी। फिर माँ कहने लगी, बेटा मेरी आत्मा भी तेरे प्रति इतनी ही फंसी हुई है, तू मेरा बेटा है, मैं भी चाहती हूँ मेरा बेटा भी मेरा साथी हो जावे, मेरे साथ हो जावे। और पुत्र इस काल ने तुझे वकील बना रखा है, बेटा भगवान के पास तो ज्ञान है इस पृथ्वी पर नहीं है, और बेटा तू नाम ले ले, काल के जाल पे छूट जाएगा। तो क्या कहता माँ, आप ना मना नहीं करूं मैं, पर मैं नाम नहीं ले सकता, मैं सारा विद्वान पुरुष, वो के जाने माता सासरों के बारे में, हम मानते हैं तू स्वस्थ होगी इस बात को मैं मानता हूँ, पर वो भक्ति के बारे में और शास्त्रों के बारे में वो क्या जाने, अशिक्षित है। अब माँ के कर प्रार्थना ही कर सकती है जवान बालक के सामने, रह रहकर अर्ज करती थी परमात्मा आपका बच्चा है, और काल की गोटी बहुत पी ली उसने, वो बहुत बड़ा विद्वान और महिमा से परिपूर्ण हो चुका है, परमात्मा उसके कदम वापस आना बहुत मुश्किल लग रहा है, और मैं दिन रात रो रही हूँ मेरे बेटे के लाके बढ़ेगी, ये परमात्मा ये जीवन व्यर्थ हो जाएगा, इसके पास साधना कोई नहीं, ये वेदों के ठेकेदार जरूर हो रहा पर वेद ज्ञान इसको है नहीं, क्योंकि दो चार दस सत्संग परमात्मा की सुनने के बाद आम प्राणी समझ जाता है भक्ति और भगवान कैसा है। प्रतिदिन की यही अर्ज माँ की रहती थी, भक्ति भी करती थी। परमात्मा ने देखा कि बुढ़िया बहुत दुखी हो रही है अपने बेटे के लिए। एक दिन सर्वानंद ने अपनी माँ से कहा कि माँ, सर्वानंद के मन में आया कि मैं अपनी माँ से अपना नाम सर्वाजीत रखवा लेता हूँ, क्योंकि मुझे बताना पड़ता है कि मैंने सबको पराजित कर दिया है, मैंने सब पर विजय प्राप्त कर ली है, मैंने सबको जीत लिया शास्त्रार्थ में, इसलिए सर्वजीत यानी सब पर विजय प्राप्त किया हुआ व्यक्ति सर्वजीत ये नाम मैं रखवाना चाहता हूँ। अपनी माँ के पास गया, माँ से कहा कि माँ आप मेरा नाम सर्वजीत कर दो, सर्वानंद की के स्थान पर सर्वजीत मेरा नाम रख दो माँ। शारदा ने कहा, बेटा ये सर्वानंद के माड़ा भूंडा नाम है, ये भी तो बहुत अच्छा नाम है। सर्वानंद ने कहा कि माँ मैंने सारे विद्वानों को शास्त्रार्थ में हरा दिया है, इसलिए मुझे सर्वजीत नाम रख दो, मेरा सब समझ जाए कि ये सर्वजीत क्यों, सर्वानंद से सर्वजीत क्यों कहने लगा कि इसने भाई सब विद्वानों को पराजित कर दिया। अब सर्वानंद ने जिद की कि नहीं माँ मेरा नाम रख दो। माँ ने कहा, बेटा तेरा नाम मैं सर्वजीत उस समय रखूंगी जब तू कबीर परमात्मा को शास्त्रार्थ में पराजित कर देगा। सर्वानंद अच्छा कहने लगा, माँ उसको अक्सर भी नहीं आता शास्त्रार्थ का, कोई शास्त्रों के विषय में जानता ही नहीं है, उसको तो दो सेकंड में हरा दूंगा, अभी गया और अभी आया। माँ ने कहा, बेटा हार और जीत का कोई प्रमाण लेके आना। सर्वानंद ने कहा, उन्हीं के लिखवा के लाऊंगा अंगूठा लवा के, माँ ऐसे कच्चा काम नहीं करता मैं। अच्छा बेटा। अब सर्वानंद जी पहुंचे, दोपहर का समय, जून का महीना, धूप खूब जोर की, 12 बजे सर्वानंद चल पड़ा शास्त्रार्थ के लिए। कैसे एक बैल के ऊपर सब सदग्रंथ वो साथ रखता था, ऊपर बढ़िया कपड़े तो ढककर रखा करता था, बैल को पकड़कर चल पड़ता। चल पड़ा तो आगे जाके दलाहों की कॉलोनी में, उस नगरी में पहुंच गया। वहां परमात्मा की एक प्यारी बेटी, मुंह बोली बेटी, जो एक मुर्दा जीवित की थी, उसका नाम कमाली रखा था। वो कमाली कुएं पर जल भर रही थी दोपहर के समय। उधर से सर्वानंद उस कॉलोनी में प्रवेश कर चुका था और परमात्मा ने ऐसी कृपा की कि उसको इतनी भयंकर प्यास लगी कि उसका जो ना गला सूख गया और जाके कहने लगा, बेटी जल्दी पानी पिला, बहुत प्यास लगी है। लड़की ने जो पानी निकाला था तुरंत ही महात्मा को पिला दिया और महात्मा ने ऐसे हाथों का गिलास बना के पी लिया। अब सर्वानंद जी ने सोचा, जो पानी पी लिया, पेट भर गया, जान बच गई, फिर सोचा कोई जुलाहा तुझे देख तो नहीं रहा है, तेरी बेइज्जती तो नहीं हो जा, जुलाहों के कुएं का पानी पी लिया। अब चारों तरफ देखा तो चारों तरफ उसी कॉलोनी के जुलाहे लोग खड़े खड़े देख रहे थे कि ये ब्राह्मण विद्वान पुरुष आज हमारे मोहल्ले में कैसे आना हो गया। आज से 550 वर्ष पूर्व एक इतने बड़े विद्वान का अर्जुलाहों की कॉलोनी में आना ऐसा होता था जैसे पहले गांव हाथी आ जा करता, सारे देखा करते खड़े होकर, कोई हाथ पचड़ कर, कोई कहीं चौतरिया पे खड़ा होगा, चबूतरिया पे ऐसे देख रहे थे कि ये कैसे आ गया सर्वानंद। सर्वानंद ने ऐसे देखा, चारों तरफ सब देख रहे हैं, अपनी इंसल्ट समझ कर, अपनी बेइज्जती समझ कर लड़की पर डांट लगाने लगा। ए लड़की, ये कौन जाति का कुआ है? कमाली ने कही, महाराज जी, जुलाहों के मोहल्ले में जुलाहों का ही कुआ होता है, ये जुलाहों का कुआ है। ए लड़की, तूने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? तूने मेरा दीन भ्रष्ट कर दिया। ये धान मैं ब्राह्मण और ये जुलाहों का कुआ तूने पहले क्यों नहीं बताया? अब वो लड़की हंसती है उसके ड्रामे पर देख कर, कहती है, महाराज जी, पानी पीकर जात पूछ रहे हो, जब तो आपकी आंखों में जान आई हुई थी, आंखों में प्राण आए हुए थे, दो मिनट तो जब जल नहीं मिलता तेरे प्राण पखेरे उड़ जाने थे, उस समय तो तुरंत तुझे जाति याद रही नहीं, पेट भर गया तेरी जाति याद आ गई तुझे। ए लड़की, गणी ना बोला है, वो कबीर कहाँ रहता है? वो कबीर कहाँ रहता है, तुझे पता उसके घर का? कमाली बोली, मुझे तो पता है, कबीर का घर शुक्र माने सबसे टॉप मोस्ट पर, सबसे ऊपर स्थान सतलोक में। कबीर का घर शिखर में जहां से ले ली गए, वहां पावन अटके पपीले के, तू पंडित ला दरिया बैले। कबीर का घर बताऊं कहाँ है? वो सतलोक में रहते हैं, सुप्रीम पावर है वो परमात्मा कबीर पूर्ण ब्रह्म सतलोक में रहता है, और वहां जाने की जो मार्ग है वो बहुत रपटीला है, अर्थात जिन सदग्रंथों के तू बैल लादे फिरे है इनमें उस परमात्मा के पाने की विधि नहीं है, इनसे नहीं मिल सकता वो जिसको तू डीए फर रहा है। परमेश्वर भी कहते हैं, वेद हमारा भेद है, हम वेदों में नहीं, हम मिले वेद से नहीं, और जौन वेद से हम मिले वो वेद जानते नहीं। कबीर साहब कहते थे कि वेद मेरा ही भेद है, मेरी महिमा गा रहे हैं चारों पवित्र वेद, लेकिन मैं मिलूं वेद से ना ही, इन चारों वेदों में वर्णित विधि से मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, महिमा मेरी पूर्ण है लेकिन मेरे लेवल की इसमें साधना नहीं है। उसके लिए संकेत किया है यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 मंत्र 10 में कि उस परमात्मा के विषय में कोई तो उत्पन्न जन्म लेकर आने वाला, कोई न जन्म लेने वाला, कोई साकार कोई निराकार बताता है, उसकी महिमा तो कोई तत्वदर्शी संत बताएगा, उन्हीं से जाकर पूछो। तो परमात्मा कहते हैं, वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेद से ना, अर्जुन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते ना। ये पांचवा वेद जो 10 आपको बता रहा परमात्मा के द्वारा पहले ही वर्णित है उनकी अमृतवाणी में, और फिर सेकंड किया है आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने, उनका समर्थन किया है जो का जो, और उन प्रभु दृष्टा महापुरुषों ने उन्होंने भी कबीर परमात्मा की गवाही दी है, एफिडेविट दिए है कि ये कबीर परमेश्वर है, काशी में धानक रूप में आया था वही प्रभु है। अब सर्वानंद जी कहता है ए लड़की मुझे यूं बता कि यहां काशी में कहां रहता है, यहां इस कॉलोनी में कहां रहता है वो कबीर। लड़की बोली आ जाओ महाराज जी मेरे साथ साथ आ जाओ। लड़की पानी का मटका उठा के चल पड़ी, सर्वानंद जी से कुछ ज्यादा तेज चल करके घर पहुंच गई और जाकर के बता दिया पिताजी ये ब्राह्मण आवे है और घने पोथे पत्रे रखे हुए, उसने बैल के ऊपर आपको पूछ रहा भगवान, आपको परेशान करने आ रहा है। परमात्मा ने कहा बेटी कोई बात नहीं आ जाने दे, हम तो गरीब आदमी हैं, वो विद्वान पुरुष हैं, जो वो ये हार जीत के भूखे होते महिमा के, हम हार जाएंगे वो जीत जाएंगे, बेटा चला जाएगा, बुला ला प्यार से जा उसको बुला के ला। अब लड़की गई, तब तक सर्वानंद जी उस झोंपड़ी के द्वार पर पहुंच चुके थे। लड़की ने कहा आजो महाराज जी यही पिताजी का बारा घर यही है, आपको भगवान याद कर रहे हैं, कबीर साहब आपको याद कर रहे हैं, आ जाओ अंदर। सर्वानंद ने कहा बेटी ऐसे कर ले जल ला अंदर से और मेरा ये लोटा भर दे पानी का, करमंडल पीतल का लोटा था पानी का भर दे। वो लड़की एक लोटा पानी का लाकर उसका लोटा भर दिया और भर दे और डाल दे, कत्ती ऊपर का उतरना हो गया और फलो हो गया, होने को हो गया तो बोला चुप बस बेटी अब रुक जा और अब ऐसे कर ये लोटा ले जा और कबीर साहब को देना, इसका के उत्तर दे वो मेरे पास लाना, मैं बाहर खड़ा हूं। लड़की धीरे धीरे उस लोटे को लेकर गई और कहा था कि इसका जल नहीं गिरना चाहिए। लड़की धीरे 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 पकड़ के परमात्मा के पास गई, पिताजी उन्होंने ये पानी का फूल भरवा कर लोटा भेजा है आपके पास, उत्तर मांगा है। परमात्मा ने एक बड़ी सुई थी कपड़े सीमण की बड़ी सुई वह उठा के लोटे में गेर दी, जितना सुई की कैपेसिटी थी उतना ही जल बाहर निकल गया और सुई तली में जाकर बैठ गई उसके तले में नीचे बॉटम प्लेस पे और काजा बेटी ये लोटा दे दे वापस स्वामी जी का। लड़की धीरे धीरे लेकर आई, सर्वानंद जी ने पूछा बेटी क्या उत्तर दिया मेरे प्रश्न का। लड़की ने कहा पिताजी ने उत्तर नहीं दिया, इसमें एक सुई डाल दी और कहा ले जा दे दे उस स्वामी जी को। अब सर्वानंद अंदर आया और कहा कबीर तूने के उत्तर दिया मेरे प्रश्न का। अब इतना देख करके वहां आसपास के जुलाहे लोग अशिक्षित इकट्ठे हो गए, आसपास आकर बैठ गए। बैठ गए तो परमात्मा ने कहा आपका प्रश्न क्या था। सर्वानंद ने कहा मेरा प्रश्न था कि मैंने अपनी मां से अपना नाम सर्वाजीत रखवाना है, सर्वानंद से बदलवा के, और मैंने संसार के सभी सदग्रंथ इनको पृथ्वी के सभी विद्वानों को पराजित कर दिया है और मैं ज्ञान से ऐसे परिपूर्ण हूं, ऐसे भरा पड़ा हूं जैसे पानी का लोटा मैंने और फ्लो करा कर तेरे पास भेजा था। मेरा कहने का संकेत मेरा प्रश्न ये था कि तू मेरे साथ वाद विवाद करने की चेष्टा मत करना, तेरा ज्ञान मेरे ज्ञान में नहीं मेरे अंदर नहीं समाएगा, वो ऐसे बाहर निकल जाएगा जैसे उस भरे हुए लोटे में कोई और पानी डाले तो वो बाहर ही जाता, उसके व्यर्थ हो उसमें पानी डालना व्यर्थ होता। मेरे साथ डिस्कस करना, मेरे को ज्ञान शिक्षा देना तेरे लिए ऐसा होगा, इसलिए अपनी हारी लिख देना। परमात्मा ने कहा हारी जीत की कोई बात नहीं, आप जैसे कहोगे ऐसे लिख देंगे, पर मेरा उत्तर सुन ले, मेरा उत्तर के था। सर्वानंद ने कहा बता क्या उत्तर था तेरा। मेरा उत्तर ये था कि आपका जो लोटा भरा था पानी का, आपका ज्ञान व्यर्थ है, आपका ज्ञान थोथा है, स्थाई नहीं है, और मेरा ज्ञान इतना वजनी है जैसे मैंने वो सुई डाली इस तेरे लोटे में और वो पानी बाहर निकल गया, सुई ने अपनी जगह तेरे लोटे की तड़ी में बना ली, तेरा पानी बाहर निकल गया। ऐसे ही मेरा ज्ञान इतना सॉलिड है कि तेरे वाला ज्ञान बाहर निकल जाएगा और मेरा ज्ञान तेरे सीने पर बैठ जाएगा जाकर। अच्छा, सर्वानंद ने कहा अच्छा प्रसन्न करो। परमात्मा ने प्रसन्न किया। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, सर्वानंद देह बता। कौन शंकर का पिता है, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश जी के माता पिता और दादा कौन है, कृपा ये बताइए। सर्वानंद जी ने कहा कि इनका कोई माता पिता नहीं, अद्रो अमर है, सर्वेश्वर है, मृत्युंजय है, महेश्वर है, उनकी महिमा गानी शुरू कर दी। परमात्मा ने कहा देवी भागवत तीसरा स्कंद तथा शिव महापुराण रुद्र संहिता 6, 7, 8, 9 स्वामी जी इनको पढ़कर सुना दे, इनमें के लिखा है। अब सर्वानंद जी का को इतना कॉन्फिडेंस था अपने ज्ञान पर कि ये झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं लिखा शास्त्रों में, जैसा आज बना हुआ ना सभी के साथ। आज ये सती थी इन सभी संतों और ऋषियों की कि उनको ज्ञान तो था नहीं, दंत कथा सुन सुन कर ये बहरे हो रहे थे, वही अपनी अटकल युक्त ज्ञान बार बार बोला करते थे। और ये किसी को ज्ञान अभी तक नहीं था, परमात्मा ने 600 साल पहले यही बता रखा था और अभी तक इनको ये ज्ञान नहीं था। इतना कॉन्फिडेंस था जैसे ये सत्या प्रकाश के पढ़ने वालों को, ऋषि दयानंद के अनुयायियों को इतना विश्वास था कि जो ऋषि दयानंद जी निर्णय ज्ञान देकर गए हैं किसी पृथ्वी पर नहीं है। और अब उन्होंने देखा उठा उठा के अब हाथ मसल रहे हैं, उनको पीछा छुटाना मुश्किल हो गया समाज में, हम कितनी छाती ठोक कर गया करते कि हमारा ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। अरे वो ज्ञान का बेरा पेटा, वो क्या ज्ञान था कि वो बकवाद थी सारी। ऐसे ही इनके सास बंडरी थी, विद्वान सुनी सुनाई दंत कथा तो गाते फिरते थे और गोट लेते थे इन सद ग्रंथों को। कोई किसी ने कोई यजुर्वेद पूरा याद कर लिया, किसी ने दोनों वेद कर लिए, किसी ने दो वेद कर लिए, किसी ने चारों वेद घोट लिए, उनको चतुर्वेदी कहने लगे। संस्कृत में बोलते रहते, आम जनता प्रभावित हो जाती और उसको ऋषि की महिमा, ऋषि की पदवी ऐसी दे देते। कमाल की बात है। अब शिक्षा में तो उस शिक्षा में किसी को डिग्री देते हैं तो उच्च शिक्षा प्राप्त ही उन बच्चों को शिक्षा की डिग्री देता है। और उस समय महर्षि कैसे बनते थे, जो अनजान जनता जिसने ज्ञान कति नहीं वो ताड़ी पीट देते, वाह वाह कर देते, जो घना बोल पड़ता संस्कृत में, उनकी उनके द्वारा दी गई डिग्री से वो महर्षि कहलाया करते थे, जिनको आप ज्ञान नहीं ये बोल के रहा है। यह बात न्यू बिगड़ रही थी। तो परमात्मा ने कहा स्वामी जी एक बार शिव महापुराण